आगे एक वो आयत है जिसपे बहुत लोग जो है ना गलत फहमी का शिकार होते हैं। एक दफा मेरे पास भी कोई एक क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा जी किसी ने कोई यानी मुसलमान हुआ लड़का, तो उसने फिर उसके बाद जिसके साथ शादी करने के लिए मुसलमान हुआ था, उस लड़की ने कहा कि अब ये आयत इसने पढ़ ली, और ये कहता है कि मैं मुझे मुसलमान होने की क्या जरूरत थी, मैं तो उसी में ठीक था। ये आयत को जब गलत इंटरप्रेट करती हैं, और मुनकिरी ने हदीस ने भी ये आयत ले ली और उन्होंने कहा देखें तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं रसूल के ऊपर ईमान की बात, यहाँ तो फिर जरूरत ही नहीं है। तो इस आयत को बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है, और हो सकता है कभी आपसे भी कोई ये आयत के बारे में पूछ ले, इसलिए इसको बहुत गौर से सुनिएगा। इन्नल्लदीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लदीना हादू, और वो जो यहूदी बन बैठे, वन्नसारा, और जो नसरानी है, वो साबीना, और जो साबी हैं। आपको यहूदियों को तो समझ में आ गया कि कौन है, नसरानी कौन। कहा जाता है कि यहूदी का भी पहले बता दूं कि ये याकूब अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा यहूदा था, उससे इन्होंने आगे अपना नाम यहूदी रख लिया, अल्लाह ने नहीं इनका नाम रखा था, ये यहूदी इन्होंने अपने आप को रख लिया, क्योंकि वो जरा ज्यादा सबके ऊपर कमांडिंग था, तो उसके नाम से ही सारे ही हो गए मशहूर। और नसारा, नसरानी, कुरान में इनका नाम नसरानी ही है, ये तो मसीही जो इनका नाम है ना, ये बाद में एक बादशाह था पॉल के नाम से, जिसने ईसाइयत इख्तियार की, और फिर उसने ये जो खिंजीर को इंट्रोड्यूस करना, सलीब को इंट्रोड्यूस करना, ये सब उसके काम थे, वरना ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त से कोई, अल्लाह माफ करे, को खिंजीर हलाल थोड़ा ही था, ना कोई सलीब का कोई कॉन्सेप्ट था, तो ये बहुत बाद में उसने किया, और उसी ने इनका नाम मसीही रख दिया। अदरवाइज इसे नसारा कहते हैं कि वो एक बस्ती थी, और जिस नासरा उसका नाम था उस बस्ती का, जहां से मरियम अलैहिस्सलाम थी, और वहीं यानी ईसा अलैहिस्सलाम वहीं से थे, तो इससे इनका नाम नसारा हुआ। बास कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कौन है जो दीन में मेरी मदद करेगा, तो इन्होंने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं, इससे उनका नाम नसारा हो गया। और साबी वो हैं जिनके बारे में आता है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही मजहब पर थे, यानी तौहीद पर थे, मगर फिर इनके अंदर इतना शिर्क आ गया कि ये बाद में, जब जैसे दूसरों में आया शिर्क, यहूदियों में भी आ गया, नसरानियों में भी आ गया, इनमें क्या शिर्क आया, इन्होंने सितारों को पूजना शुरू कर दिया, बाज़ तफसीरों में आता है इन्होंने आग की पूजा शुरू कर दी, इस तरह से ये इराक के इलाके से थे, और अभी भी बाज़ कहते हैं कि शायद इनमें ये लोग मौजूद हैं। मन आमना बिल्लाही वल यौम आखिर व आमिला सालिहन, जो ये तीन चीजों पर को कामों को करेगा, यानी क्या, ईमान अल्लाह पर, ईमान आखरत पर, और साले अमल करेगा, उसके लिए क्या है, फलहम अजरुहम इंद रब्बी, तो उनके लिए अजर है इनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। अब यहां से देख के कुछ लोगों ने सोचा कि बस अल्लाह पर ईमान ले आए, हम आखरत पर ईमान ले, हमने नेक अमल कर लिया, हम बड़ा चैरिटी वर्क कर रहे हैं, फलां हाँ फलां अस्पताल बना लिया, ये कर दिया, अब बस हमारे लिए निजात के लिए इतना ही काफी है। आप क्या कहते हैं, मुसलमान हो तो फिर तुम होगे, निजात तुम्हें मिलेगी, या तुम कोई यहूदी का है तो यहूदी हो जाओ, या नसरानी का है नसरानी हो जाओ तो फिर तुम्हें निजात मिलेगी, तो कुछ भी नहीं, अपना मजहब बदलने की जरूरत, जो जहां हो बस वहीं पे रहो, बस ये तीन काम कर लोगे तो ठीक है तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। एक पहली बात ये कि यहाँ पे उन्होंने कहा देखिए रसूल की तो बात ही नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बीच में से वैसे ही निकाल दिया कि जो है उनके ऊपर ईमान लाने की जरूरत नहीं। हालांकि आप ये देखें कि जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना ना हम ले, आप जब ये बात शुरू हुई है, तो उस वक्त मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ से ये बात शुरू हुई, जिस वक्त के अल्लाह ताला ने इनसे क्या फरमाया, आयत नंबर 41 देखें, वआमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिकन लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरीन, उस पे जो मैंने नाजिल की है, जो तस्दीक करती है तुम्हारी किताब की, उसको पर ईमान लेकर आओ, वो क्या है, कुरान। तो शुरू ही बात इससे हुई कि कुरान पे ईमान लेकर आओ, कुरान पे ईमान लाने का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना, क्योंकि वो कुरान किसकी जुबान से अदा हो रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है, किससे हमें मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है। जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानेंगे तो कुरान को मानेंगे, अल्लाह की तरफ से आम बंदे के ऊपर तो नहीं अल्लाह की वही नाजिल होती, जब आपने माना कि ये कुरान अल्लाह की वही है, ठीक है, अल्लाह की वही है, जब आप उसके ऊपर ईमान ले आए, तो वो कुरान जिस पे नाजिल हो रहा है वो लाजमी अल्लाह का रसूल है ना, क्योंकि किसी भी चलते फिरते पे तो नहीं कुरान नाजिल होती या वही नाजिल हो जाती, तो आपने ऑटोमेटिकली उसको रसूल माना, तो रसूल को मानना इसके अंदर इंक्लूडेड ही था। अब जब रसूल को मान लिया अब तो आगे बात चल रही है ना, तो वो तो पहले बात हो चुकी है। तो एक तो ये बात, नंबर टू बात, जब हम बात को सिर्फ एक को लेके पकड़ के चलते हैं ना, तो शायद कोई कंफ्यूज हो जाए, इन टोटेलिटी चीज को देखना चाहिए। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो लोग ईमान लाए यानी मुसलमान बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, इस्लाम लाए, वल्लदीना हादू, और जो यहूदी बन बैठे, यहूदियों के अंदर भी मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाने वाले थे, जो सही ईमान लाए, जो सही दीन पर चले। और आगे आप देखेंगे फिर कई हमें बातें पता चलती हैं, जैसे रजुल मोमिन की, हमारे सूरह मोमिन में बात सुनेंगे, जिसने फिरौन के दरबार में भी खड़े कहा था सही तौहीद पे थे वो, इस तरह और भी कोई लोग बिल्कुल सही तौहीद पे थे और मूसा अलैहि सलाम का उन्होंने साथ दिया। और फिर नसारा में भी देखिए, जैसे हवारी थे जो ईसा अलैहि सलाम के साथ थे, और आगे भी उनकी मजहब में आगे जो लोग सच्चे दीन पर चलते रहे वो लोग, और साबियों में से भी जिन्होंने सही वाकई अपने दीन को, दीने इब्राहिमी को फॉलो किया, मन आमना बिल्ला, पहले देखिए मैं ये बात आपको समझा दूं फिर आगे हम चलते, मन आमना बिल्ला, जो अल्लाह पर ईमान लाए। अब आप मुझे बताएं कि वो कोई कहे मैं तो क्रिश्चियन हूं, ले मैं क्रिश्चियन ईसाई हूं, मैं अल्लाह पर तो ईमान रखता हूँ कि एक गॉड है, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाना का मतलब यहाँ पे क्या है? वैसा ईमान लाना जैसा ईमान लाने का हक है, जैसा ईमान लाना चाहिए। ये कौन सा ईमान है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्ला, और उज़ैर अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्ला, या ये सितारे भी कुछ हैं जो शरीक है अल्लाह के, या आग जो है इसकी हम पूजा करते हैं, इसको सजदा करना चाहिए क्योंकि ये जो है ना ये भी कोई खुदा है, ये कौन सा अल्लाह पे ईमान हुआ? ईमान वो जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से चाहा है कि ऐसे ही ईमान लाया जाए, समझ आई बात? यहीं से हमें पता चलती इंपॉर्टेंस अकीदे की, अकीदे की इंपॉर्टेंस कि अल्लाह पर ईमान क्या होता है। हम बस मुसलमान तो हैं, जरा एक कलमा पढ़ लिया तो बस मुसलमान है, हमें कोई समझ नहीं है कि हमारा अकीदा अल्लाह के ऊपर कैसा होना चाहिए, अल्लाह के असमाओ सिफात के बारे में, अल्लाह की कुदरतों के बारे में, अल्लाह ताला को किस तरह से हम पहचाने कि अल्लाह कौन है, उसे बिल्कुल नावाकिफ होते हैं, तो ये भी हमें कौन बताएगा? अब कैसे किसी को पता चलेगा, मुझे बताएं कौन किस तरह? हाँ अल्लाह है, एक है अल्लाह, बस ठीक है, कोई खुदा है, मगर वो खुदा कौन है, कैसा है, क्या उसकी सिफात है, ये कौन बताएगा? ये तो कोई रसूल ही बताएगा ना, तो रसूल आ गया ना बीच में, फरिश्ते तो उतर के नहीं बताएंगे, जब ये कह दें इस इक्वेशन से निकाल ही दिया अगर रसूल की जरूरत ही नहीं है, तो कौन बताएगा अल्लाह पर ईमान क्या होता है? ठीक है, तो अल्लाह पर ईमान जैसा ईमान रखने का हक है, और वो हक कैसा है? अब हमें अल्लाह ताला की तमाम सिफात का कहां से पता चला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तो पता चला ना, कुरान से पता चला ना, कुरान भी नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से अदा हुआ। तो जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो आखरत पर ईमान लाता है, अब आखरत पर भी ईमान मन माना ईमान नहीं कि जैसे मैं समझ दूं कि आखरत है, क्यामत है, लेकिन बस उस दिन सारों को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर देना, कोई जहन्नुम वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये खुद से नहीं हम बना सकते। आखरत पर ईमान वैसे ही जैसे हमें पैगंबर ने समझाया है कि वहां वहां ऐसे ऐसे होगा, उस सबको मानना, अगर वो उन्होंने बता दिया कि मीजान है तो हमने माना, अगर उन्होंने बता दिया कि वहां पे अर्श का साया है तो हमने माना, वहां पे बता दिया कि जहन्नुम है तो हमने माना, वहां पे बता दिया पुल सिरात है तो हमने माना, वहां पे बता दिया हशर का मैदान लगेगा, हमने माना ना, या अपनी मनमानी तावील कर, हाँ एक क्यामत का दिन होगा, उस दिन बस असल में वो दिन जन्नत में जाने का दिन है, उस दिन सारे जन्नत में चले जाएंगे, ये होगा, ये तो नहीं है ना। तो अपने मनमाने कॉन्सेप्ट्स, अपने आइडियाज लेके नहीं आप यौमे आखरत बना सकते, जैसे इन लोगों ने बनाया हुआ कि वो कोई क्यामत का दिन क्या है, बस सब जन्नत के अंदर चले जाए, कुछ नहीं है, और हमें तो वो सारी बातें माननी है जो हमें पता चली है, जो हमारे नबी ने हमें बताई है। अब हमें जन्नत जहन्नुम का भी कहां से पता चला? हमारे पैगंबर ने बताया तो पता चला ना, हमें कोई ख्वाब तो नहीं आ गया था, तो आखरत के दिन को भी वैसे ही मानना जैसे उन्होंने बताया, थ्रू आउट शुरू से आखिर तक हम ईमान लाते हैं। अब कुछ लोग उनके अंदर से, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन कुछ लोग उनके अंदर से इनकार कर देते हैं,
कभी कब्र के अजाब का इनकार कर दिया, कभी बरजख का इनकार कर दिया, कभी ये इनकार कर देते हैं कि वहां पे कोई वाकई ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। कहते ये सारी बातें हैं, बस कुछ नहीं होना, कुछ ये नहीं है, ये नहीं इस तरह से सब, ये सिर्फ हमें बताने के लिए कि हम अच्छे काम करें तो इसलिए हमें जहन्नम के डरावे दिए गए, हमें बताने के लिए कि हम अच्छे काम करें तो इसलिए हमें जन्नत का तो लालच दे दिया गया, ऐसा होना कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला माफ करे, कोई ऐसे भी लोग हैं। तो हमने जिस तरह हमें कुरान में और हदीस में बताया कि हम थ्रू आउट ऐसे ईमान लेकर आए, वो है आखिरत पर ईमान। अब चाहे वो कोई अपने आप को ईमान वाला कहे, चाहे वो कोई क्रिश्चियन कहे, चाहे कोई अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन जैसा ईमान पैगंबर ने पहुंचा दिया वैसे के ऊपर ईमान लाए। क्योंकि हम अपने आप को ना सिर्फ देखें इस टाइम लाइन में जब से दुनिया बनी है, और भी तो इंसान आए हैं, ये यूनिवर्सल आयत है सबके लिए है कि जिस जिस टाइम फ्रेम में कोई भी जिंदा होगा और वो इन चीजों पर ईमान लाएगा तो वो अल्लाह के हाँ निजात पा जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं, फिर अमले साले भी करें ईमान, उसके बाद अमले। अच्छा, एक और ईमान के मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि ईमान के 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, ईमान के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ईमान ये तीनों पार्ट आप पूरे करेंगे तो ईमान मुकम्मल होता है। ईमान पहला क्या है कि आपके दिल में तस्दीक हो जिस चीज पे आप ईमान रखते, यानी दिल माना हुआ हो, दिल इस चीज को क्या तस्दीक को कहेंगे कि यानी इस चीज को वेरीफाई करे कि हाँ ये बात है। जैसे मतलब हम कहते हैं हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, तो अल्लाह के किस बात पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, तो अब दिल इसकी गवाही देता है। अच्छा, फिर नंबर 2 जुबान से इकरार, जुबान से इकरार भी जरूरी है। फिरौन ने दिल से मान लिया था, पता था उन लोगों को कि ये अल्लाह के नबी, जुबान से नहीं मानते थे। इकरार बिल लिसान, तो तस्दीक बिल कल, इकरार बिल लिसान, और फिर तीसरी चीज अमल बिल जवारे, जवारे से अमल करना, यानी अमल भी आप करके दिखाओ अपने बॉडी पार्ट्स के साथ, अमल में भी आपके दिखना चाहिए कि हाँ आपका ईमान है। जब अमल में नहीं दिखता तो इसका मतलब क्या होता है, कहां पे कमजोरी होती है, ईमान में कमजोरी होती है। ठीक है, तो आखिरत के दिन पर और साले अमल करें। अब कुछ लोग सोचते हैं बस साले अमल ही काफी है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क इतना कर रहे हैं वही काफी है। नहीं, जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक नहीं है निजात। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ईमान है। वो कहते हैं ईमान को तो छोड़ो, आप देखते नहीं है फलाने ने इतना यतीम बच्चों के लिए किया, फलाने ने इतने तुम्हारे मुसलमान नहीं करते जितना उन्होंने किया, तो फिर क्या वो नहीं जन्नत में जाएंगे, तो क्या वे ईमान कहाँ चला गया। फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बीहिम, तो उनके लिए अजर है उनके रब के यहाँ, इंदा रब्बीहिम से पता चला कि स्पेशल अजर है। इंदा जब होता है ना पास, उनके रब के पास, तो इसका मतलब अल्लाह ने को बहुत ही स्पेशल चीज देनी। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे कहा गया इन्नल्लदीना आमनू, ईमान वालों को भी तो कहा गया है, सिर्फ उनको तो ना हम सोचे, यहाँ पे 4 ग्रोहों को कहा गया, वो जो ईमान लाए उनको भी कहा गया मन आमना बिल्ला, तो पहले ही ईमान लाए हैं, फिर उनको क्यों कहा गया मन आमना बिल्ला। इसलिए कि ईमान वो जो अल्लाह को मतलूब है, सिर्फ ये नहीं कि अपना आप मुसलमान के खाने में लिख दे, रिलीजन के खाने में आपने लिख दिया इस्लाम तो आपका मजहब इस्लाम हो गया। नो, जैसा अल्लाह को चाहिए ईमान वैसा, कि अल्लाह पर वैसा ईमान होना चाहिए, जैसा आखरत पर ईमान अल्लाह को मतलूब है वैसा होना चाहिए। जैसे अमले साले तुम्हारे लिए भी जरूरी है, तुम ये ना सोचो कि हम मुसलमान है तो अब कोई नेक अमल करने की जरूरत ही क्या, मुसलमान जो हो गए हम तो अब हम तो जन्नत में ही जाएंगे। नहीं, अमले साले तुम्हारे लिए भी शर्त है अजर पाने के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज अब और एक आपको बात बताती हूँ कि जिससे आप आज के वक्त में देख लें, आज के वक्त में कोई नहीं कह सकता कि मैं जो हूं मैं तो नसारा हूं या मैं तो साबी हूं या मैं तो यहूदी हूं, तो अब मेरे लिए भी ये आयत अप्लाई आज में हो रही है, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने कुराने पाक में ही फरमाया है। कुराने पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अब दीन क्या है, सिर्फ इस्लाम है बस। जब इस्लाम आ गया, तो देखिए जब मूसा अलैहि सलाम आए थे तो उस वक्त जरूरत नहीं थी कि कोई लोग मुसलमान हो या ईसाई हो या कुछ कोई और हो, उस वक्त जो मूसा अलैहि सलाम पे ईमान लेकर आए वो ही मुसलमान थे। जब ईसा अलैहि सलाम आ गए तो ईसा अलैहि सलाम पे ईमान लाना जरूरी था, फिर ये नहीं कोई कह सकता था कि हम मूसा अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाए, अब हम इनके ऊपर नहीं लाएंगे। जब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो आप पे ईमान लाना जरूरी है, कि जो भी पैगंबर आए उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी था। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, आपके आने के बाद ये ही दीन है जो आखिरी दीन है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह आले इमरान में, वमन यबतगी गैर अल इस्लामी दीनन फलन युकबल मिन्हु, जो कोई इस्लाम के सिवा कोई दीन लेकर आया कयामत के दिन उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। यानी जब दीन इस्लाम आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अब आपके आने के बाद कोई अगर इस्लाम नहीं लेकर आता तो उससे कोई और दीन कबूल नहीं किया जाएगा। यानी अब इस टाइम के ऊपर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने के कोई और दीन ऐसा नहीं है जो अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेबल हो, ये याद रखिए। और ये कुरान पढ़ के प्लीज मत कहा करें कि वो सारी ठीक है, यानी हम बहुत अमन पसंद हैं, सभी तो ठीक है, कोई गलत नहीं, ना ना ना, किसी को ना गलत को, सब ठीक है। कैसे सब ठीक हो सकते हैं? फिर आपने समझा ही किया, अगर आपको लगता है कि सभी ठीक है फिर आपकी क्या कमाल की बात हुई, फिर अब तो सारे ही एक ही है ना, फिर क्या मुसलमान होना और क्या कुछ और होना, तो आपने सबको एक में ही डाल दिया, फिर तो सारे ही नंबर अल्लाह सबसे ही राजी है, तो फिर इस दीन के आने की भी क्या जरूरत है, एक बार चलते रहते ना फिर। तो ऐसा नहीं है, सिराते मुस्तकीम एक है, और अल्लाह ने जब साफ कुराने पाक में फरमा दिया वह मई अब तक गैर इस्लामी दीन फलई युकबला मिनहु, हरगिज नहीं उसे कबूल किया जाएगा, तो और क्या कंफ्यूजन रह गई है फिर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमा दिया कि जिस तक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतला पा ले, आपके आने का जिसको पता चल गया, आपकी इतला पा ले, फिर भी वो आपके ऊपर ईमान नहीं लेकर आता तो वो जहन्नमी है, ठीक है, वो जहन्नमी है जो आप पे फिर भी ईमान नहीं लेकर आता। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अब और सारे अदियान एक्सेप्टेबल हैं और इस्लाम भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप किसी भी मजहब से हो जाएं, आप बस अच्छे रहें, देखें आप इंसानियत के काम करें, तो वो बस ठीक है, कोई मसला ही नहीं है आपका। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और सिवाय इस्लाम के कोई भी और रिलीजन वाले जैसे आखरत पर ईमान रखने की जरूरत है वैसे नहीं ईमान रखते, जैसे अल्लाह पर ईमान रखने की जरूरत है वैसा नहीं रखते। आप देख लें क्रिश्चियंस को, अल्लाह पर ईमान उनका है, वो तो शरीक ठहराते हैं साफ साफ अल्लाह के साथ। यहूदियों को आप देख लें, अगर कहीं तो इनका एक फिरका जो उजैर अलैहिस्सलाम को बेटा कहता है, लेकिन अगर वो नहीं भी कहते तो बाकी जो है वो आखरत के दिन पे वैसे ईमान ही नहीं है उनका जैसे होना चाहिए। तो ये जब ये चीजें आएंगी तो खुद ब खुद रसालत पर ईमान तो खुद ब खुद इसमें आ जाता है। अब ये उम्मीद है समझ आ गई होगी ये बात, क्योंकि ये आयत समझनी जरूरी है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा ऐसे लोगों पे। खौफ मैंने आपको बताया था फ्यूचर का होता है, गम पास्ट का होता है, यानी अब उनको जो दुनिया में छोड़ा है ना वो, उसका कोई गम नहीं होगा। यानी जो दुनिया में गम परेशानियां देखी उनके ऊपर भी इंसान पास्ट की कोई बिटर मेमोरीज होती हैं, जो तलख यादें होती हैं, उनको याद करके कई दफा रोना आ जाता है, कई दफा इंसान सोचता है तो वो गमगीन हो जाता है कि ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसा होता है ना, कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में। लेकिन उनको वहां जाके वो याद नहीं आएंगे कि उनके ऊपर वो रोए, ठीक है। नंबर 2, जो दुनिया की खुशियां थी ना वो भी नहीं याद आएंगी, ये जो खुशी के मोमेंट्स थे। ये क्यों ऐसा होगा? इसलिए क्योंकि कभी खुशी के मोमेंट्स भी गुजर जाते हैं तो इंसान को रोना आ जाता है ना, हाँ वो कितने अच्छे हम रहा करते थे और ऐसे, और आज इंसान उसको सोच के कि वो दिन गुजर गए अब, और फिर रोने लगता है। ऐसे होता है ना कि याद आ गई हम बचपन में ऐसे करते थे, वो खुशी के ही दिन है, उनको याद करके आज गमगीन हो जाते हैं, लेकिन उस दिन वो उसको भी नहीं याद करके रोएंगे। क्यों? ना गम को याद करके रो रहे हैं, ना खुशी के मोमेंट्स को मिस करके रो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो उनको मिलेगा ना वो इतना अच्छा होगा कि उनको कुछ याद नहीं रहेगा। नंबर 2, वो याद भी आएगा तो वो इतना बेवकत सा लगेगा कि वो क्या बेकार सब चीजें थी, और इस तरह जो मिल चुका होगा ना वो उसको ट्रेजर करेंगे, वो इतना कुछ अच्छा होगा कि वो कोई चीज मिस ही नहीं करेंगे पास्ट की।
ठीक है। और खौफ आगे का नहीं होगा, खौफ होता है हाय ये चीज, जैसे हम दुनिया में कोई पहले तो इतनी मेहनत करते हैं कुछ पाने की, जब कुछ चीज मिल जाती है तो फिर फौरन ये परेशानी लग जाती है, हाय मुझसे छीन ना जाए, हाय मुझसे दूर ना हो जाए, चाहे वो कोई प्यारा रिश्ता हो, चाहे वो कोई कीमती चीज हो, कुछ भी हो, इंसान को धड़का लगा रहता है कि हाय मुझसे ये दूर ना हो जाए, वहां पे ये खौफ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो हमेशगी का है, हमेशगी का। इतना जब ये ऐलान होगा ना वहां पे कि अब मौत को भी मौत आ गई, मौत को भी वहां पर अल्लाह अकबर एक मींडे की शक्ल के अंदर लाके और उसको जिबा किया जाएगा जन्नत और जहन्नम के दरमियान, तब वो जो जन्नती होंगे ना अगर मौत होती तो खुशी से मर जाते कि अब मौत को भी मौत होगी तो अब इसका मतलब हमें कभी मौत नहीं आनी, वो हमेशा यहाँ रहेंगे, कितनी खुशी होगी वो। सुभान अल्लाह, तो भला खौफ होना नहीं, अल्लाह जालना मिनहु, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करना कि हम वो दिन देखें कि अब कभी ही नहीं मौत आनी और हमें हमेशा इस जन्नत में रहना। वइज अखज़ना मीथाकुम, और जब लिया हमने पक्का वादा तुमसे, कौन सा पक्का वादा? ये वो अहदे अलस्त नहीं है जो मैंने आपको बताया था रूहों से लिया गया था, वो वाला नहीं, ये एक और अहद इनसे लिया गया खास तौर पे बनी इसराइल से। और इस अहद में क्या लिया गया कि इनको जो किताब दी गई थी तौरात, इसके बारे में इनसे अहद लिया गया था। अहद मीसाक वो होता है जो पूरे होशो हवास से और जिम्मेदारी से लिया जाए, वो सोते हुए नहीं उन्होंने कोई वादा कर लिया था अल्लाह से, ठीक है। तो ये मीसाक लिया गया इनसे। वरफअना फौकहुम अत्तूर, यानी अब ईद कह के ना, जब मैंने आपको बताया था जब भी ईद आए तो क्या होता है, याद करो ये बात कि ऐसे हुआ था मीसाकुम। अब ये किसको कहा गया, कुम, तुम से लिया गया था। ये कुरान तो उतर रहा है बहुत बाद में और ये बातें हो रही हैं बहुत पहले की, तो किन से अहद लिया था? अब कुरान कह रहा है मीसा का कुम, तो सामने वाले को कहते हैं तुम से, तो ये मदीना में जो यहूदी थे उनको कहा जा रहा है जब तुमसे मीसाक लिया गया था, इसलिए कि इनके इनसे तो नहीं लिया गया था, इनके अबाओ इजदाद से लिया गया ना, तो इन्हीं से हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था जो अबाओ इजदाद की चीजें होती हैं वो औलाद उन सबको बरतती भी है और उनके उन सब उनकी लेगेसी को आगे चलाती है। ये तो बहुत फख्र करते थे ना हमारे अबाओ इजदाद ऐसे, हम तो ये, अब उनको उनके कारनामे भी बताए जा रहे हैं कि जिनके ऊपर तुम फख्र करते हो ये उन्होंने किया था, अब तुम इसको बदल सकते हो, अब तुम भी इस रविश को लेके आगे ना चलो, वला तकुनु अव्वला काफिरिन भी, अब तुम पहले काफिर ना बन जाना, तुम ही सबसे पहले इनकार करने वाले बन जाओ। तो अब उनसे मीसाक लिया गया था, पक्का वादा लिया गया था, उन्होंने कहा हमने तो नहीं ये जिम्मेदारी उठानी, ये तो हमसे नहीं ये किया जाता, हमसे तो नहीं ये ली जाती किताब। शरीयत उन्होंने खुद मांगी थी लेकिन उसके बाद खुद ही उससे बचने लगे और उसे इनकार करने लगे। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर तूर को मुअल्लक कर दिया, यानी तूर पहाड़ जो था ना वो रूट से उठाया गया। तूर वैसे कहते हैं उस पहाड़ के लिए भी, लेकिन वो कहते हैं एक सुरियानी जुबान में तूर किसी भी पहाड़ को भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी पहाड़ था, सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा एक अल्लाह का मुजजा था जो इन्होंने देखा कि पहाड़ हवा के अंदर खड़ा हो गया इनके सरों पे, पहाड़ खड़ा हो गया और ये उस पहाड़ के नीचे थे और इनसे कहा गया लेते हो कि नहीं, तो कहने लगे कि हाँ हम लेते हैं, फौरन जल्दी से सजदे में गिर गए और फिर एक आंख से ऊपर देखते जा रहे थे कि पहाड़ गिर तो नहीं रहा हमारे ऊपर। इसीलिए बहुत बाद तक भी यहूदियों में आपको पता है कैसे सजदा होता था, ये गाल नीचे जमीन पे रखते थे, जैसे इनके अबाओ इजदाद ने सजदा किया था ना, कि यानी उनकी गाल जाहिर है जमीन पे लग गए, आंखों से तो ऊपर देख रहे थे टेढ़ी करके, ये अल्लाह माफ कर दे ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, यानी ऐसे उनको दी गई किताब। खुदू मा आतैना कुम बिकुव्वतिन, इनसे कहा गया पकड़ो इसको कुव्वत के साथ, वत्कुरु माफी लअल्लकुम तत्तकून, इसको याद करो जो इसमें है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी जब अल्लाह की किताब आती है तो वो कोई मजाक नहीं होता कि वहां हमने नहीं लेनी, हमें नहीं इसकी जरूरत, हमारे पास कहाँ टाइम है इसके लिए,
ये इसलिए नहीं होती, ये बहुत सीरियस चीज होती है। अल्लाह ने उनके ऊपर पहाड़ को खड़ा कर दिया था आसमान में, और ये कहा गया था उनको। आज हमारे पर फिजिकली नहीं पहाड़ आता, लेकिन कई दफा जिंदगी में वाकई पहाड़ जैसे गम आ जाते हैं, और फिर हम फटाफट खोल लेते हैं किताब को, हम भी जल्दी से फिर खोल लेते हैं। ये हमें भी देखें, जो अल्लाह की किताब है वो इसलिए नहीं आई है दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने उतारी है कि इसको ऐसे ही बस ऊपर उठा के रख दिया जाए, खूबसूरत इसके गिलाफ सिए जाएं, वेलवेट के सी के बड़े खूबसूरत गिलाफों में डाल के रख दिया जाए, ये इसलिए तो नहीं आई है ना। और ना ही ये बगैर समझे पढ़ने के लिए आई है कि सवाब लिया जाए। सवाब तो मिलेगा ही इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे, लेकिन ये किस लिए आई? हिदायत के लिए। अब हिदायत का ही अगर सामान ना बनी तो क्या बना? फिर तो अल्लाह ने उनके ऊपर तूर खड़ा करके उनको कहा पकड़ो। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर भी जो मसाइब आते हैं, जो हमारे ऊपर भी पहाड़ खड़े हो जाते हैं, उनकी वजह यही हो कि हम किताब को नहीं मजबूत पकड़ते। और ये पहाड़ तभी टले जब हम मजबूती से पकड़ लें इसको। समझ आई बात आपको या नहीं? यानी फिजिकली तो नहीं पहाड़ खड़ा हो रहा, लेकिन हम कहते हैं ना पहाड़ जैसी मुसीबतें, पहाड़ जैसे गम, तो वाकई वो आते हैं जब हम भी नहीं पकड़ते ना, तो आते हैं। तो उनको कहा गया, दो चीजें कही गई, खुदू मा आतैनाकुम, इतना भी काफी था, लेकिन क्या कहा गया? बिकुव्वतिन, अब मतलब ये नहीं है कि उसको जोर से पकड़ लो, मतलब क्या है कि इसको सीरियस लो, इसको मजबूत थामो, इसके साथ जिंदगी गुजारो, इसको जिंदगी में शामिल करो। हमें भी कहा गया है, हमारे कुरान में है, वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हब्लुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान कहा गया इसको मजबूती से थाम लो, थामा हमने। हमारा तो कुरान खुलता ही तब है जब रमजान पहला आ जाता है, या तब खुलता है जिस वक्त कोई मर जाता है, या तब खुलता है जब कोई नया घर खरीद लेता है, तो अब चारों नाचार पढ़ना ही है। उन्होंने कहा कि भाई कुरान खानी कराई, तो फिर ये मजबूती से थामना है। वज़कुरू माफी ही, और याद करो जो इसमें है। याद करो का मतलब क्या? ये नहीं है कि हिफ्ज कर लो इसको, ये नहीं मतलब है, यानी याद रखो इसको, इसकी इसकी जो तालीम है इसको याद रखो, यानी इसके ऊपर अमल करो, इसको समझो, सीखो, इसके ऊपर चलो, तभी याद होगा ना, तभी जिंदगी में ये पता चलेगा, अच्छा ये काम कैसे करना है, हाँ कुरान के अंदर ये बात आई थी, इस तरह से करना। जब यही याद करना है कि आप याद रखें बर वक्त इसको, जब जिंदगी में चलने लगे तो आपको पता हो कैसे चलना है। अभी बहुत से लोग हिफ्ज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, कुछ पता ही नहीं कि इसमें क्या है, क्या उनको समझा सीखा ही नहीं, तो वो रटना मुराद नहीं है यहाँ पे। याद रखो जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम गॉड कॉन्शियस बन जाओ, क्योंकि ये अल्लाह की किताबें ही इंसान को मुत्तकी बनाती हैं। मुत्तकी कौन होता है? जो अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह ताला की सजाओं से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने वाला, जो गुनाहों से बचने वाला, जो नेकियों में भागने वाला, वो मुत्तकी होता है। ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तो ये किताब ही मुत्तकी बना सकती है। क्या हमारी किताब में भी कोई ऐसा है कि मुत्तकी बनाती है? देखिए सबसे पहले हमने क्या बात पढ़ी, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए है हिदायत। तो ये भी कुरान भी इंसान को तकवा के लेवल्स में आगे लेकर जाता है। सुम्मा तवल्लई तुम इम्बादी जाले का, फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छा वो तूर तो आ गया, फिर कह दिया हाँ, हम करेंगे, वादा किया, बस ठीक है, हम इस किताब को मजबूती से थामेंगे, अब नहीं हमने इसको छोड़ना। जैसे हम कहते हैं आपको, भाई इसके साथ ताल्लुक रखो, किताब के साथ इसके साथ जुड़ जाओ, किताब के साथ। तो उन्होंने भी कहा, वादा तो कर लिया, उसके बाद 4 दिन बाद वादा भूल गए। अभी इनको कहा गया था, भाई इसको सीरियस लेना है, इसको अहम समझना है, इस पे अमल करना है, ये है कुव्वत से पकड़ना, आम पकड़ना नहीं कहा गया, कुव्वत से पकड़ो इसको, इसको रिफ्लेक्ट करो, इसके मीनिंग के अंदर तदब्बर करो, इसके अहकामात को याद रखो। इन्होंने क्या, वो थोड़े दिन बाद कहा वो बातें, वो मुसीबत टली भूल गया। जैसे हम, हमारे पर मुसीबत का पहाड़ जब हटता है तो तो सारे वजीफे भूल जाते हैं। वो तो मैं तो इतना वजीफा, जो कुरान खोल के बस कुरान से ताल्लुक इतना हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही होता है ना। तो उनके ऊपर से भी जब वो पहाड़ टला, तो 4 दिन गुजरे और फिर भूल गए। तो अल्लाह ताला फरमाया उन्होंने मुंह मोड़ लिया इसके बाद। फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और ना अगर फजल होता अल्लाह का तुम पर, तुमने मुंह मोड़ लिया ना इसके बाद, तो अल्लाह का अगर फजल ना होता तुम पर और रहमत ना होती, तो तुम बहुत खसारा पाने वालों में से हो जाते। ये अल्लाह का फजल ही था कि उसने फिर भी तुम्हें मोहलत दी, फिर भी तुम्हें तुम्हें चांस दिया, फिर भी तुम्हारी ये जराइम देखकर तुम्हें हलाक नहीं कर दिया। ये उसकी रहमत है, ये उसका फजल। क्या चीज होती है जो एक्स्ट्रा दिया जाए? इंसान डिजर्व नहीं करता, हक नहीं रखता, मगर कोई एक्स्ट्रा दे है? तो तुम तो कब के तबाह हो चुके होते जिस तरह के काम तुम कर रहे थे। नहीं, अल्लाह ताला ने इनको अपनी शरीयत का हामिल बना के खड़ा किया, ठीक है ना, और इनको कहा कि तुम लेके तुम आगे ये चलना तौरात को। अब ये तो खुद नहीं पकड़ रहे, खुद मुंह फेर लिया। मुंह फेरने का मतलब क्या था पता है आपको? मुंह फेरने का मतलब क्या था? ये नहीं उन्होंने कहा हमने तौरात को नहीं मानते, ये नहीं कहा। वो तो पढ़ते थे, उनके उलमा बहुत जोरों शोर से पढ़ते थे। क्या मतलब है पलटने का? ये कहते थे हम हमसे नहीं अमल होता, हमसे हम कहाँ अमल कर सकते हैं। शेख शारावी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि आज हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है वो बिल्कुल सिमिलर है इससे, जो बनी इसराइल ने यहाँ पे कहा था। आज मुसलमान भी कहते हैं ना, हाँ अमल करना बड़ा मुश्किल है, अमल बहुत मुश्किल है, अमल कहाँ किया जाता है आज तो। मतलब जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, अब कहाँ इन अहकामात पे चला जा सकता है। और अब तो दीन को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, यही कहते हैं ना। अमल नहीं हो सकता, अमल बस पढ़ लेंगे ठीक है, लेकिन अमल नहीं हम कर सकते। और वो भी सोचते थे कि मूसा अलैहि सलाम तो हमसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये हम कहाँ से कर सकते हैं, ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। आज भी कहते हैं हम इसे शरीयत कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है, शरीयत तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। एक मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, एक दफा एक सर्वे हुआ था मुस्लिम कंट्रीज में कि आज शरीयत नाफिज होनी चाहिए या नहीं। ये हालांकि ये कोई सवाल है, ये कोई सवाल होना चाहिए किसी मुसलमान से कि शरीयत का निफाज होना चाहिए या नहीं। हाँ, तो शरीयत किसके लिए आई है? वो फरिश्तों के अमल करने के लिए आई है भाई, मुसलमानों के लिए ही आई है ना। मुसलमानों का कानून है जो भी शरीयत है, किसका कानून है मुसलमानों? हाँ अलग बात है कि कुछ लोगों ने इस नाम को बदनाम कर दिया और पता नहीं क्या क्या चीजें इसके साथ जोड़ दी हुई। अदरवाइज शरीयत जो है वो किस क्या है? इस्लामिक लॉ है। तो इस्लामिक लॉ भी मुसलमानों से पूछा जाए ये भाई, ये इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए अगर आपकी इजाजत हो। तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों का उन्होंने सर्वे बताया, उनमें 100% तो कहीं पे भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था कि किसी लोगों ने कहा हो कि हाँ भाई, सब लोगों ने कहा हो कि हाँ शरीयत नाफिज हो। बहुत बहुत पुअर स्टेटिस्टिक्स थे जो हैरान कुन थे। कहीं 30% लोगों ने कहा, कहीं 40% लोगों ने कहा। पाकिस्तान का जरा ज्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो भी 90% ने कहा हो, मगर बाकियों से बेहतर था। खैर हैरत है कि देखिए आप, वो ही बात जो उन्होंने कहा, सुम्मा तवल्लाई तुम मिन बादी ज़ालिका, फिर मुंह मोड़ लिया तुमने इसके बाद। तो आज देखिए सारी उम्मत मुस्लिमों ने मुंह मोड़ा हुआ, हमें तो जरूरत नहीं है शरीयत की। सूरह मायदा में आप देखिएगा कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें आई हैं कि जब तुम नहीं अल्लाह के हुक्मों को नाफिज करोगे तो तुम ये हो, तुम ये हो, तुम काफिर हो, जालिम हो और फासिक हो, जो अल्लाह ने नाजिल किया अगर उसको नहीं नाफिज करते। फिर उसके बाद भी हम कहते हैं हम तो अल्लाह के नाम ले हुए, हमें इज्जतें क्यों नहीं मिल रही? फिर मुंह मोड़ा किस किस ने हुआ बताएं? आज कितनी मिन्नतें करनी पड़ती ना, आओ कुरान सीख लो। कहते लो हमने क्या सीखना है, हमें तो सब कुछ आता है, यानी हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, हमें क्या जरूरत है इसकी, पढ़े लिखे हैं हम। कितनी मिन्नतें कर करके कुछ लोगों को बुलाया जाता है, कितना उनके आगे हुआ, नहीं नहीं जी आप फिक्र ना करें, आपको हम ऐसे रखेंगे, फूलों की तरह रखेंगे, ना आपका कोई टेस्ट लेंगे, ना आपसे कुछ पूछेंगे, भाई आप आ जाएं पढ़ने के लिए। भाग भाग जाते हैं,
ऐसे कि जैसे पता नहीं इनको बांधा हुआ है यहाँ पे, कुरान पढ़ना ना हो गया, जैसे पता नहीं क्या इनके ऊपर को तौक लगा दिया इनकी गर्दनों में, ये हमारे हालात हो गए आज। क्या हम नहीं मुंह मोड़ने वाले? कितने परसेंट लोग हैं जो किताब को समझते हैं? अमल तो बाद की बात है, अमल की नहीं अभी बात हो रही, सिर्फ कितने परसेंट लोग हैं जो किताब को समझते हैं। मेरा जी चाहता है कि आप लोगों को ये एक सर्वे के लिए भेजूं कि आप लोगों का होमवर्क है, आप ये करें और पूछें कि कितने परसेंट लोग हैं, आपको पता चले कि क्या आजकल हालात है। अगर उन्होंने मुंह मोड़ा था तो आज कौन सा कोई इसको लेकर बैठे हुए हैं जो कि इसको समझते हैं या इसके ऊपर अमल करने की कोई कोशिश है? आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ने मुंह मोड़ा, जिनको अरबी आती है, जो इस जुबान को भी समझते हैं, उन्होंने भी कैसे मुंह मोड़ा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ ना, ये हमारे लिए सुम्मा तवल्लई तुम मिम बादी जालिका, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, कौन सा फरिश्ता लेकर आया, कैसे लोहे महफूज पे ये पड़ी हुई, किस पैगंबर पे ये उतरी, कितना एहतमाम हुआ इस किताब के लिए, वो तुमने आज इसको ये मकाम दिया बस वजीफे करने के लिए, वो हमारी मुश्किलें आसान हो जाए उसके लिए इस किताब को रखा, क्या मकाम दिया हुआ हमने इसको, बस सिर्फ चूमने का है, वो चूम चूम के रखते जाओ, ये मकाम है हमारी जिंदगी में, इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने अदना को ले लिया और खैर को छोड़ दिया। हम भागते हैं हर और चीज के लिए जहां से हमें दुनियावी फायदा मिले, लेकिन इसको हमने पसे पुश्त डाल दिया। आगे आएगा कि उन्होंने अपनी किताब को पीछे डाल दिया था, आज हमने भी वही किया है। अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह ताला ने उनको भी फरमाया ये हमारे लिए भी सेम चीज है, अगर अल्लाह का फजल ना होता ना, हाँ तो हम चल फिर ना सक रहे होते इस जमीन पे, क्योंकि सेम टू सेम वही बातें सेम। एक औरत ने तो यहां तक कहा, जब उसको कुरान की दावत दी गई तो उसने कहा देखें जी मैं इसलिए नहीं पढ़ती, अमल करना पड़ेगा और अमल मैंने करना नहीं, तो जब अमल करना ही नहीं है तो यानी पहले से ही बंदा, ये यहूदियों की क्या बात हम कर रहे हैं, ये हमारी अपनी बातें हैं जो हमारे अपने मुंह की हैं, जब मैंने अमल ही नहीं करना तो फिर पढ़ने का फायदा क्या? अब इसका क्या जवाब है? क्या ये सेम चीज नहीं है जो वो कहते थे? तभी तो नहीं वो ले रहे थे इस किताबों को, हमने नहीं लेना, तो अल्लाह ने तूर खड़ा कर दिया उनके ऊपर, हमारे ऊपर तूर खड़ा हुआ है लेकिन हमें फिर भी नहीं होश आता। अल्लाह अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين